रविवार से मैं जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के एक एक मंत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार हम विश्वानी देव मंत्र समझ रहे थे, आज दूसरा मंत्र है हिरण्यगर्भ। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार प्रतिबिंद्यामुते माम कस्मै देवाय विशा विधेमा। ऋग्वेद के 10वें मंडल 121 सूक्त और पहला मंत्र है। वैसे ये पूरा का पूरा एक सूक्त है जिसका नाम है हिरण्यगर्भ सूक्त। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का दूसरा मंत्र है। पहले मंत्र में हमने ये जाना कि भक्त परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मेरे अंदर जो दुर्गुण है, जो भी खराब इमोशन है, खराब एटीट्यूड है, उसको दूर करने के लिए मुझे एबिलिटी दें और जो दुनिया में कोई भी अच्छी चीज है उसको मैं अपने अंदर अडॉप्ट कर सकूं, पहली चीज है कि एक्सेप्ट कर सकूं और अडॉप्ट कर सकूं, उसके लिए मुझे एबिलिटी दें। दूसरा मंत्र ईश्वर की ग्लोरिफिकेशन है, ईश्वर की जो महिमा, ये संसार का वो बनाने वाला है, पालन करने वाला है। तो किस तरह का जब सृष्टि, ये जो यूनिवर्स कॉस्मस जब बनने से पहले किस हालत में थी और जब बनने की प्रोसेस शुरू हुई तो उस समय परमात्मा का क्या पोजीशन था, क्या स्टेट था, उसको ये मंत्र डिफाइन करता है। पहले इसके वर्ड मीनिंग को समझते हैं तो जिससे कि आपको हर मीनिंग एक हर वर्ड क्लियरली समझ में आए। हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे, वो हिमा हिरण्यगर्भ क्या है बाद में समझेंगे। सृष्टि से पहले जब ये क्रिएशन था नहीं, बना नहीं था, उससे पहले वो प्रेजेंट था। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, जितने भी भूत हैं, मतलब आपको डराने वाला भूत नहीं, ये घोस्ट एंड स्पिरिट है ना, ये तो होते ही नहीं है, ये तो सुपरस्टिशन है और माइंड की बीमार मन का खेल है। भूत का अर्थ होता है एनीथिंग विच इज मेड, जो कुछ भी क्रिएटेड है, बना है, उसको भूत कहते हैं। तो सूरज, चांद, आकाश, धरती, आप, हम, कुर्सी, टेबल, सब भूत हैं। तो संसार के जितने भी चीजें हैं सब भूत हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड और क्रिएटेड। तो सभी संसार के हर चीजों का वो जो कुछ भी जात पैदा हुआ है उसका वो पति है, मास्टर है, लॉर्ड है, मालिक है, अकेला था। और जब सृष्टि बनी, जब ये क्रिएशन बना, तो सदाधार उसने ही उनको धारण किया, सस्टेन किया, होल्ड किया। वो पृथ्वी आदि प्लैनेट्स हो या द्या द्यूलोक अर्थात जो भी सेलेस्टियल रीजन है, स्टार्स हैं, नक्षत्र हैं, उनको धारण किया। कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम उस कह कहते हैं सुख, सुख स्वरूप परमात्मा के लिए हवि के द्वारा, आहुति के द्वारा जो भी ऑफर करते हैं, हम अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। ये उसका अन्वय या ऑर्डर है और ये सिंपल ट्रांसलेशन है। हिरण्यगर्भ क्या है? हिरण्य कहते हैं सोना को, सोना समझते हैं गोल्ड। गर्भ ओम होता है पेट, जो गर्भधारण करते हैं। तो हिरण्यगर्भ का लिटरेरी ट्रांसलेशन हुआ गोल्डन ओम, सोने का गर्भ, जब माताएं गर्भधारण करती हैं, वही गर्भ, कोई भी, मतलब जब अंदर कोई बच्चा पैदा होने से पहले प्रोसेस में गुजरता है उसी को गर्भ कहते हैं। तो वो जो गोल्डन ओम है वो सृष्टि के आरंभ में था, सृष्टि होने के बाद सबका मालिक बना, रूलर बना और सबको धारण करता है। मैं उस सुख स्वरूप को आनंद स्वरूप परमात्मा के लिए हवि विधान करता हूं। पिक्चर को देखिए, बाद में समझेंगे धीरे धीरे। अब इस पूरे मंत्र में जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है वो है हिरण्यगर्भ, क्या चीज है। तो जनरली ये दुनिया बा यूनिवर्स कैसे बना, इसके बारे में हजारों सालों से मिस्ट्री है और आज भी ये मिस्ट्री है। ध्यान रखिए, कोई सीधा कोई फिलोसफी या कोई ऐसी थ्योरी अभी एस्टैब्लिश थ्योरी नहीं है जो कहे कि यही प्रूफ है कि यूनिवर्स ऐसे बना, ऐसा कहीं नहीं। सब थ्योरी के रूप में आज भी चल रहा है हजारों सालों से। अलग अलग रिलीजियंस, बिलीफ सिस्टम, फिलोसोफर, साइंटिस्ट है ना, तो वो अपने अपने ढंग से इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में दुनिया के आरंभ में जो हमारे हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र, वो भी उस पर उनका भी चिंतन है कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया बनने से पहले कैसे था और क्या ये जो संसार है एक दिन नष्ट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, तो क्या ये एक ही दुनिया है या मल्टी यूनिवर्सेस हैं, तो क्या ये यूनिवर्स जो है ये नष्ट होगा उसकी जगह नया यूनिवर्स लेगा या एक ही यूनिवर्स हमेशा है। और हम हमारे इंसान अलग अलग फील्ड में, साइंस, रिलीजियस, फिलोसफी के फील्ड में अपने अपने ढंग से बात करते हैं। 20th सेंचुरी से पहले, 20वीं सेंचुरी से पहले इसके बारे में बहुत ज्यादा हमें जानकारी कोई ठोस नहीं था। बाद में धीरे धीरे जो अलग अलग थ्योरी आए उसमें तीन थ्योरी सबसे पॉपुलर या डोमिनेंट थ्योरी के रूप में आए, जिसको वन ऑफ देम उसमें एक है जिसको आप बिग बैंग थ्योरी कहते हैं या द स्टेडी स्टेट थ्योरी, और दूसरा है ऑसिलेटिंग थ्योरी। उसमें जो स्टेडी स्टेट थ्योरी है उसका भाव यह है कि जो यूनिवर्स है कभी बना नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा, हमेशा ऐसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा है ना, धरती में कभी कुछ प्रॉब्लम होगा वो होगा, पर द यूनिवर्स इज ऑलवेज सेम ही रहता है, इसका कोई ना आदि है ना अंत है, हमेशा है। उसे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि कोई अलग से ईश्वर मानने की जरूरत नहीं है और किसी को मानने की जरूरत नहीं। जो दूसरा थ्योरी जो सजेस्ट करता है कि ये यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एंडलेस साइकिल ऑफ एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, फैलता है फिर सिकुड़ जाता है, फैलना सृष्टि है, नई नई चीजें बनते रहते हैं, कंट्रैक्शन जब होता है तो चीजें नष्ट होते जाते हैं। और जो तीसरा बिग बैंग थ्योरी जिसको आप कहते हैं वो बेसिकली ज्यादा पॉपुलर है कि ये यूनिवर्स जो हम देख रहे हैं ये अबाउट 13 पॉइंट सम बिलियन साल पहले ये एक अचानक एक पहले दुनिया जो थी, यूनिवर्स थी, वो पूरा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंटेड थी और उसने विस्फोट हुआ तो उससे धीरे धीरे फिर वो जो गैस है छिटक के इधर उधर गए और धीरे 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 जब उसमें कूलनेस आने लगी तो गैलेक्सीज बनने लगे, फिर गैलेक्सी में से फिर स्टार्स, प्लैनेट्स आने लगे और वो प्लैनेट्स को नॉर्मल होने में, ठंडा होकर के उसमें पहाड़ पर्वत सब बनने में लाखों करोड़ों साल लगे, तब जा करके इस तरह के यूनिवर्स हमारे सामने जो कुछ है। ये बेसिकली बिग बैंग थ्योरी का मोटा मोटा आइडिया है। हमारे मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपके शास्त्रों में भी इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बारे में 10,000-20,000 साल पहले कितना ऊंचा, कितना हायर लेवल पर उनका चिंतन था। उनमें कुछ विचार हो सकते हैं गलत साबित हो, सही साबित हो, बट इट वॉज ए डिलिब्रेशन, डिस्कशन होना, डिलिब्रेशन करना अपने आप में इंटेलेक्चुअली एक बहुत हाई लेवल की बात करता है। मैं ये जो बिग बैंग थ्योरी बहुत लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं, वैसे वैदिक ज्यादातर वैदिक विद्वान लोग इस थ्योरी को मानते नहीं है, पर बिल्कुल बिग बैंग थ्योरी के सेम फिलॉसफी को मनुस्मृति अगर आप पढ़ते हैं, और मनुस्मृति जो कि 3,500 साल पुराना है, आज भी जो उसमें मिलता है, मैं आपको उसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। उसके बाद हम हिरण्य गर्भ पर आएंगे। आप इंग्लिश देखते रहिए, मैं संस्कृत बताता हूं। ये मनुस्मृति का पहले अध्याय का पांचवा श्लोक है। आसीदितम तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तम इव सर्वतः। ये यूनिवर्स बनने से पहले जब यूनिवर्स नहीं था, सब जगह बिल्कुल डार्कनेस, अनपरसीव्ड, डिस्टिट्यूट ऑफ एनी डिस्टिंक्टिव मार्क, किसी भी तरह का साइन जिससे कि पता चले ये कुछ भी नहीं था। तदंडम अभवत हैमम सहस्रांशो समप्रवम। और उसके बाद एक अंडा जो मिलियंस ऑफ सन के, सूरज के समान चमकीला था, वो बना, जिसको बिग बैंग थ्योरी में आप सिंगल पॉइंटेड कहते हैं, सिंगल पॉइंट। और फिर क्या हुआ? ताभ्याम सशकलाभ्याम च दिवं भूमिं च निर्ममे मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम्। और वो जो सोने का अंडा अभी सोने का गर्भ समझ रहे थे, तो आएंगे उस पर आएंगे। और वो विस्फोट हुआ, इससे ये स्टार्स, प्लैनेट्स, फिर उसके बाद प्लैनेट्स में पानी, हवा, पंच महाभूत, वो सब चीजें मैनिफेस्टेड होने लगी। क्योंकि हिरण्य गर्भ को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। हिरण्य गर्भ समझते ना, गोल्डन ओम। अब पहले ये क्लियर करके चले, गोल्डन ओम क्या है? गोल्ड रिप्रेजेंट करता है शाइनिंग को, चमकीले चीजों को। ये जो सूरज अगर आप देखते हैं ना, ये गोल्डन कलर का दूर से दिखते हैं, जो चमकीले भी होते हैं, शाइनिंग भी होते हैं, और थोड़ा उनकी जो कलर है जो येल्लोइश होता है। इसीलिए जो भी शाइनिंग कलर, जो सूरज नक्षत्र वगैरह को हम गोल्डन शाइनिंग बोलते हैं। हिरण्य गर्भ मतलब परमात्मा का वो अवस्था जहां यूनिवर्स अपने बनने की प्रोसेस में था, डिसॉल्यूशन से उभर चुके हैं। मतलब हमारे यहां हर चीज साइक्लिक मोड में होता है ना, ये यूनिवर्स है, ये एक दिन नष्ट होगा, उसकी जगह नए यूनिवर्स आएगा। ये सोलर सिस्टम है, नष्ट होगा, उसकी जगह नया सोलर सिस्टम आएगा। ये प्लैनेट है, नष्ट होगा, उसकी जगह नया प्लैनेट आएगा। इस प्लैनेट का हर चीज नष्ट होता है, उसकी जगह नई चीज लेता है। हम भी हैं और हम मरते हैं, हमारे जगह नई आत्मा, नया शरीर लेकर आता है। तो सबको साइकिल में जाना पड़ता है, यूनिवर्स को भी जाना पड़ता है। तो जब वो नष्ट होते हैं तो वो पूरी तरह अपनी एग्जिस्टेंस को सीज नहीं कर जाते, अपनी एग्जिस्टेंस को छोड़ने देते हैं, वो अब्सेंस में नहीं चले जाते, वो सिर्फ अपने शटल फॉर्म में चले जाते हैं, जिसको हम फिलोसॉफिकल भाषा में प्रकृति कहते हैं। खैर वो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों में नहीं लेकर जाएंगे। वो स्टेट को हम प्रलयावस्था कहते हैं। प्रलय मतलब चीजें तो हैं पर अपनी शटल फॉर्म में है, दिखाई नहीं देते, इनविजिबल फॉर्म में है, उनमें डिस्टिंक्टिव नेचर कुछ है नहीं है जिसे आप उनको मार्क कर सकते हो। तो करोड़ों सालों के प्रलय के बाद जब संसार में दोबारा फिर परमात्मा दोबारा इस यूनिवर्स को बनाने की कोशिश करता है, जब यूनिवर्स बनने की प्रोसेस शुरू होता है, तो वो जो प्रोसेस जब शुरू होता है, जर्मिनेशन होता है, जैसे आप बीज के अंदर जो प्रोसेस चलता है प्लांट बनने का, अंडे का अंडा आने के बाद अंडे के अंदर जो 10-20 दिन तक जो प्रोसेस चलता है उसमें बच्चा पैदा होने का, वो जो प्रोसेस है, और मां के गर्भ में जो मैमल्स होते हैं, इंसान के इंक्लूड करें, उनके गर्भ में जो बच्चा बाहर आने से पहले फुल फ्लेश्ड होकर के जो प्रोसेस चलता है, वही तो गर्भ का कंसेप्ट है ना। तो परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सब जगह है, उसके अंदर प्रलय अवस्था में भी यूनिवर्स उसी के अंदर है, सृष्टि में भी उसी के अंदर है। जब प्रलय के बाद सृष्टि की प्रोसेस शुरू होती है, वो शुरू जब परमात्मा के अंदर ही होता है, उस स्टेट को हिरण्य गर्भ कहा। पर उस हिरण्य गर्भ को अच्छी तरह समझने के लिए हमें समझना है कि सृष्टि से पहले जब ये यूनिवर्स बना नहीं था तो क्या सिचुएशन था। आज भी बड़े सारे साइंटिस्ट लोग उस पर अलग अलग तरह के राय रखते हैं। तो पर इंटरेस्टिंगली बड़े मजेदार बात है, हमारे वेदों में इसके लिए सैकड़ों मंत्र डेडिकेटेड हैं, मतलब सैकड़ों मंत्र हैं जो इस चीज को डिफाइन करते हैं, उस चीज को बताते हैं। मैं कुछ दो, एक बड़ा फेमस जो ऋग्वेद का मंत्र है नासदीय सूक्त, उसके 2-4 मंत्र आपको कोट करूंगा, आपको इंग्लिश में दिखाऊंगा, मंत्र में पढ़ूंगा। एंड द स्टेट ऑफ द यूनिवर्स बिफोर क्रिएशन कैसा था वो आपको जानना है। ये नासतीय सूक्त ऋग्वेद का 10वें मंडल 119वां सूक्त है। नो सदासित तदानी नासित रजो नो व्यमा परो यमावरी वह कुहक शर्मन्नम्भ किमासित गहनम गभीरम। इंग्लिश का वहां दे रखा है ट्रांसलेशन। तो नासदीय सूक्त कहता है जब यूनिवर्स अपने डिजॉल्व स्टेट में था, प्रलय की अवस्था में था, अभी कुछ भी नहीं था, तो कैसा था? कहते ना वहां सत था, ना कोई एग्जिस्टेंस था, ना कोई नॉन एग्जिस्टेंस था, ना वहां कोई फंक्शन था, मूवमेंट था, ना वहां कोई आकाश था, स्पेस था, एम्प्टीनेस था, कुछ धुंधला सा था, डार्कनेस सा था, वो क्या था किसी को पता नहीं। न मृत्युरासीद अमृतम न तर्ही न रात्र्या नासित प्रकेत, न यहां मौत था न जीवन था। बड़ी मजेदार बात है, मौत कभी कहीं नहीं हो सकता जहां कोई जीवन ना हो। मरता कौन है? जो पैदा होता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, अगर मरना नहीं चाहते हो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, क्या है? पैदा मत होना। इट द ओनली कंडीशन। तुम कुछ भी कर लो मरोगे, क्योंकि पैदा हुए हो। पैदा होना बंद कर दो, मरना बंद हो जाओ। तो जीवन नहीं था, मौत नहीं था, बोला कोई था नहीं तो मरेगा कौन? ना जीवन था ना मौत था, कुछ भी नहीं था। और ज्ञान का तो सवाल ही नहीं उठता है भाई, कोई चीज था ही नहीं, ना कोई ऑब्जेक्ट था ना कोई सब्जेक्ट था, तो कौन जानेगा, किसको जानेगा? तम आसित तमसा गूढ़ अग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमामिदम। सब जगह डार्कनेस ही डार्कनेस, कंसील्ड इन डार्कनेस ही था। और उस इनडिस्क्रिमिनेट केवस में से पहली बार जो वॉइड था, एक वॉइड पैदा हुआ, एक शून्य खाली पैदा हुआ, वो फॉर्मलेस होकर के पैदा हुआ। और मैं नहीं जानता यम विसृष्टि यत आबभूव यदि वादधे यदि वाना यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वान वेद। और ये मुझे नहीं पता उस सृष्टि को कोई देखने वाला था या नहीं था, वहां सचमुच कोई परमात्मा बना रहा था या नहीं बना रहा था, मुझे नहीं पता। इसी चीज को किसी कवि ने बड़े सुंदर ढंग से हिंदी में लिखा है, कि तो मैंने संस्कृत में मंत्र बोला तो उसकी हिंदी में बड़ा खूबसूरत कविता है। सृष्टि से पहले सत नहीं था, सत मतलब एग्जिस्टेंस, असत भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या कहां, किसने ढका था उस पल तो अगम अटल जल भी कहां था। सृष्टि का कौन है कर्ता, करता है या अकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता सत्ता अदृश्य बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं जानता, है किसी को नहीं पता, नहीं है पता। तो ये नासदीय सूक्त का सृष्टि से पहले क्या अवस्था थी उसका वर्णन है। जो सब कुछ कुछ भी नहीं था, इसका सार है कि कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था को सीधा क्यों नहीं बोला भाई, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, कौन गया था देखने के लिए? कुछ भी नहीं था, कोई देखने वाला भी तो नहीं था ना, तो कैसे बता दोगे कुछ नहीं था? इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कुछ था या नहीं था, तो हम ही नहीं थे, कोई नहीं था, परमात्मा जाने कौन था। अब उसमें से ध्यान रखिए, जिनको मॉडर्न कॉस्मोलॉजी पता है वो आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। अब उन कुछ नहीं था में से, अब कुछ नहीं था मतलब ऐसा नहीं कि इट वॉज एवरीथिंग इज एम्प्टी ना। जब चीजें अपनी शटल फॉर्म में होते हैं तो अदृश्य होते हैं। वहां से जब सृष्टि प्रक्रिया शुरू होती है तो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, प्रकाश का पुंज है ना, जब इकट्ठा होता है और धीरे धीरे वो जर्मेशन के फॉर्म में होता है, वो कहाँ होता है? जब कुछ नहीं था तो परमात्मा तो था, परमात्मा के अंदर होता है। तो परमात्मा का उस समय का मेटाफोरिकली ये मत समझ बैठना कि परमात्मा ऐसा ही था। एक स्त्री का वर्णन है कि मानो परमात्मा गर्भधारी था और उसका नाम क्या था? हिरण्यगर्भ। सारा संसार उसके अंदर बन रहा था, विस्फोट होता है गैसेस, फिर धीरे 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 गैलेक्सी वगैरह उसमें से बनते हैं। यही है हिरण्यगर्भ। वो हिरण्य मंत्र को ध्यान दीजिए, हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे। अग्रे मीन्स पहले, बिफोर। बिफोर व्हाट? बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्स। ये मैनिफेस्टेड यूनिवर्स अपने एग्जिस्टेंस में आने से पहले अगर कोई था तो परमात्मा था, और वो परमात्मा हिरण्यगर्भ, उसका नाम क्या था? हिरण्यगर्भ। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। अब संसार पैदा हुआ, धीरे धीरे गैलेक्सीज बने, फिर उसमें से तारे, नक्षत्र, स्टार्स वगैरह आए, फिर प्लैनेट्स आए, एटम्स की कॉम्बिनेशन। और एटम शब्द से आपको साइंटिफिक लगेगा, तो सत्व रज तमो के पार्टिकल्स से, मिश्रण से धीरे धीरे जो पंच महाभूत के तत्व वो मैनिफेस्टेड होने लगे। वो सत्व रज तम क्या है? संसार जो मैटेरियल वर्ल्ड है, थोड़ा एक दो मिनट इसको समझाने में लूंगा, नहीं तो आप कहीं बीच में खो ना जाएं। ये जो यूनिवर्स से मैटेरियल वर्ल्ड है, मॉडर्न फिजिक्स में आप मानते हैं, ये मैटर जब नष्ट होता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है शटल फॉर्म में, और उसकी जो छोटा पार्टिकल्स होता है आप इसको एटम्स बोलते हैं। हम मतलब वैदिक शास्त्र उसको परमाणु बोलता है, और वो जो एटम्स हैं वो तीन पार्टिकल्स का जुड़ा हुआ है जिसको आप इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बोलते हो। वो सबसे छोटा पार्टिकल है। अब नया रिसर्च में आया कि नहीं, उसको भी हम तोड़ के, ब्रेक करके उससे भी और छोटा पार्टिकल बना सकते हैं, जिसको आप बिग हॉस क्या कहते हैं उसको, बोश हगन या हैगन ऐसा कुछ कहते हैं, जो जो उस पार्टिकल्स को भी तोड़ के जो और छोटे पर आए। इसका मतलब है कि मैटर अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है। वो एटम्स जब जुड़ते हैं, जब उनका यूनियन होता है, तो धीरे धीरे मैटर फॉर्म लेने लगता है। और मैटर्स का नष्ट होने का मतलब क्या है? वो अपने शटल फॉर्म में चले जाते हैं। दैट इज द साइकिल ऑफ मैटर एंड एनर्जी। किसी को आइंस्टीन की फॉर्मूला से आप पढ़ते हैं, मैटर एंड एनर्जी, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी जब ग्रास फॉर्म में आता है, स्थूल रूप में आता है आपके, तो ये मैटर है। मैटर मतलब यह हवा है, पानी है, अग्नि है, पृथ्वी है, दुनिया के पांच ही तरह के रूप हैं, उनमें से सारी दुनिया बनती है। और जब बना हुआ नहीं होता है, अनबना होता है, अनमेड होता है, तो अपने पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। ये तो मॉडर्न फिजिक्स है। हमारा शास्त्र क्या कहता है? सांख्य दर्शन कहता है संसार बिल्कुल वैसे ही जो मैटर के रूप में होता है उसको हम विकृति कहते हैं। ये जो संसार है, ये जो अलग अलग रूप वाला संसार है जिसमें हवा है, पानी है, आकाश है, सूरज है, चांद है, हम है, आप है, कुर्सी है, टेबल है, वो उन पार्टिकल्स का यूनियन से, संयोग से बना हुआ स्थूल रूप है। और ये जो सब नष्ट हो जाते हैं, वो अपना एग्जिस्टेंस सत्ता नहीं खो बैठते, तो क्या होता है? सिर्फ वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? हम नहीं बोलते एटम, एटम्स या इलेक्ट्रॉन, ये तो अंग्रेजी वर्ड है। हमारे यहां क्या बोलते हैं? सत्व रज तम। सत्व रज तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। जब ये तीनों पार्टिकल्स बराबर लेवल पर होते हैं, इक्वानिमिटी के स्टेज पर होते हैं, तो संसार डिसॉल्व माना जाता है, प्रलय की स्थिति में होता है, या संसार नहीं ये माइक भी कल नष्ट हो जाएगा जब इसके ये अपने पार्टिकल्स के फॉर्म में आ जाएगा, और जब उसके पार्टिकल्स पैरेलल लेवल पर हो जाएंगे दैट इज द स्टेट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ दिस माइक। माइक एक मैटर है, उसी को कहते हैं सत्व रज तम गुणात्मक। और वो सत्व रज तम रूपक जो तीन पार्टिकल्स में जो विषमावस्था, विषम समझते हैं, जब उनमें इनइक्वालिमिटी होने लगता है, जब वो अप्स एंड डाउन होते हैं, उनमें हलचल पैदा होने लगता है, उनमें मूवमेंट्स होने लगता है, और वो कम बहुत होने लगते हैं, तो धीरे 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 वो मैटर के फॉर्म में आते हैं। कौन सा मैटर बनेगा? मिट्टी बनाने के लिए मिट्टी भी मैटर से बना है, लोहा भी मैटर से बना है, सोना भी मैटर से बना है, आपका शरीर भी मैटर से बना है, बिजली भी मैटर से बना है, आग भी बना है, पानी भी बना है, फिर ये सब सब उसी से बने, तो फिर अलग अलग क्यों है? अलग अलग है अलग अलग प्रोपोर्शन के कारण। तीनों पार्टिकल्स की प्रोपोर्शन में जब चेंज होता रहता है तो मैटर अपना फॉर्म, अलग अलग फॉर्म वाले मैटर होते हैं, उनकी नेचर, उनकी क्वालिटी, उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है, फिर धीरे 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 ये संसार बनता है। तो जो लोग कहते हैं ये संसार रैंडमली बन गया, अपने आप बन गया, कोई बनाने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, किसी ने आइडिया नहीं दिया, अपने आप बन गया, वो इसीलिए डाइजेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि इतनी ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे बना भाई? तुम अपने शरीर को देख लो, छोड़ दो दुनिया है? ये जो एनाटॉमी पढ़ते हैं डॉक्टर, उनको पूछो एक छोटे, सिर्फ ये मैं उस दिन वो नाक के डॉक्टर के पास गया था, कान वाले डॉक्टर के पास, उसके डॉक्टर के उसके ऑफिस में वो लगा हुआ है पूरे इतने ही एरिया का, नाक कान और थ्रोट का नक्शा, उनको बारीकी में देखो हजारों चीजें, तभी तो एक डॉक्टर ईएनटी में ही एक्सपर्ट होता है, वो और कुछ नहीं कर सकता, इतना इतना जानने का, इतना जानने का। एक कार्डियोलॉजिस्ट को कार्डियोलॉजी होगा, वो आपके पैर का इलाज नहीं कर सकता क्योंकि पूरी जिंदगी बीत जाती है उसको समझने में, आपकी बॉडी का कॉम्प्लिकेशन है इतना है, कोई दुनिया का इंसान कितना प्रोग्रेस कर चुका है, सुपर कंप्यूटर सुपर रोबोट बना चुका है, तभी आज तक हम सक्सेसफुल नहीं हुए कि ब्रेन को तो बनाना छोड़िए, ब्रेन को हम समझ भी पाए। अभी तक तो न्यूरोलॉजी के साइंस में हमने न्यूरो सिस्टम का 10% भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं, ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, क्या ये सब चीजें रैंडमली हो गया और आप इंटेलेक्चुअल लोग ढूंढने की कोशिश करते हो? नहीं, तो फिर कंप्यूटर भी रैंडमली हो जाता है, रोबोट भी अपने आप बन जाते हैं, दिमाग क्यों? इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग दिमाग लगाते हैं, फिर तो गांव का कोई भी आदमी ऐसे उठपटांग लोहा को तांबे को मिक्स कर देता, अच्छा देखो जी अच्छा ये तो कंप्यूटर बन गया, ऐसा कभी होता है? कितनी दिमाग लगानी पड़ती है, कितने टैलेंटेड होना पड़ता है उसके लिए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तुम छोटा सा चिप बनाने के लिए कितने टैलेंट को खपाना पड़ता है कि तो ये बॉडी अपने आप स्ट्रक्चर्ड हो गया, ये शेर का ये स्ट्रक्चर है, ह्यूमन बींग का ये स्ट्रक्चर है, गधे का ये स्ट्रक्चर है, ये वाणी अपने आप आ गई है, ये सूरज और चांद अलग अलग अपने आप हो गए रैंडमली? नहीं होता है, इसको कोई इसका कोई इंजीनियर है, और वो इंजीनियर कोई मैटर तो हो नहीं सकता, मैटर तो इनर्ट है, जड़ है ना, उसमें बुद्धि थोड़ी होती है, बुद्धि किसमें होती है? चेतना में होती है ना। आपकी डेड बॉडी में कोई दिमाग होता है? आपका डेड बॉडी को सोच सकता है? किसी का कोई व्यक्ति मरा हुआ है, डेड बॉडी पड़ा है, उसमें कुछ काम का है? सड़ने के अलावा कुछ नहीं होता है डेड बॉडी में, इसलिए हमारे यहां उसको जला देते हैं, यूजलेस है। जिंदा आदमी में हो सकता है, जिंदा आदमी में क्या फर्क है डेड बॉडी और जिंदा आदमी में? आत्मा है, कॉन्सियसनेस है। चलो आप आत्मा नहीं मानते हो, कॉन्सियसनेस को मानते हो ना, दैट इज द ओनली कंडीशन ना, कि कॉन्सियसनेस है तो जिंदा, नहीं है तो मुर्दा। और वो कॉन्सियसनेस क्यों है? क्योंकि वो किसी के कारण से उसके अंदर आया है, उसी को हम आत्मा बोलते हैं। कोई चेतना ही ज्ञान बुद्धि टैलेंट ये सब चेतना का कॉन्शसनेस की प्रॉपर्टी है। जैसे आप लोग फिजिक्स में बायोलॉजी में अलग अलग चीजों में पढ़ते हैं ना, प्रॉपर्टी की एनालाइज करते हैं कि ये लोहा है उसकी ये प्रॉपर्टीज है, ये सोना है उसमें ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये पानी है इसकी ये प्रॉपर्टीज है। तो चेतना की क्या प्रॉपर्टी है? अगर कहीं चेतना है मतलब कॉन्शसनेस है तो वहां ज्ञान होगा, अवेयरनेस होगा, वहां बुद्धि होगी, कम होगा ज्यादा होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, होगी। परमात्मा परम चेतना सारे संसार का इंजीनियर भी वही है, आर्किटेक्ट भी वही है और धारण करने वाला भी वही है। भूतस्य जात पतिरेक आसीत। जब सारा संसार बन गया या जो कुछ बन जाता है, बनने से पहले मालिक किसका हो? मतलब मैं आपको किसी आइलैंड में छोड़ा हूं जहां एक भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, आप कहोगे मैं राजा हूं, किस चीज का राजा हो? रूल्ड कोई होना चाहिए ना जिस पर आप राज करोगे। तो परमात्मा मालिक या ईश्वर का अर्थ पता है? ईश्वर का अर्थ होता है राजा, शासन करने वाला, रूलर। परमात्मा ईश्वर तभी बनेगा ना जब कोई सामने चीजें हो जिसको बनाना हो, बिगाड़ना हो, कुछ करना हो। सृष्टि से पहले परमात्मा, सृष्टि की प्रक्रिया में उसका नाम हिरण्यगर्भ, जब कुछ था ही नहीं तब परमात्मा, जब चीजें बन गया तो परमात्मा का नाम क्या, परमात्मा का रोल क्या हो गया? ईश्वर, प्रभु। प्रभु समझते हैं मालिक, ईश्वर समझते हैं रूलर। ये सब उपाधि तब बनेगा ना परमात्मा में जब चीजें बनी, अब वो कंट्रोल करेगा। तब सृष्टि हिरण्यगर्भ का नेक्स्ट स्टेप है, अब वो सारे भूतों का, घोस्ट और स्पिरिट्स का नहीं जो आपको रात को डराते हैं, मतलब जिनका दिल कमजोर हो या जिनके माँ बाप ने पट्टी पढ़ा रखा है, भूत है प्रेत, वही लोग डरते हैं। अच्छा बड़े मजेदार चीज पता है, भूत की बात आई। अच्छा भूत प्रेत ना सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते हैं किनको, जो भूत प्रेत मानते हैं। अच्छा जो नहीं मानता उसको कभी नहीं दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा। टीवी में कितने बड़े बड़े शो देख करके दावा करो नहीं ये रशिया में अमेरिका में साइंटिस्टों ने प्रूव किया, ये सारा मेंटल गेम है। या तो आप मेंटली वीक हो या आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई कि भूत प्रेत की बात चढ़ा चढ़ा चढ़ करके आप वो जा ही नहीं रहा। जो भूत प्रेत नहीं मानता वो कभी नहीं भूत प्रेत उसको दिखाई देगा। और मजेदार बात बताएं, किसी भी हिंदू धर्म के किसी भी लिटरेचर में भूत प्रेत जो घोस्ट स्पिरिट डाइन चुड़ैल का कोई दूर दूर का रेफरेंस नहीं। और इससे ज्यादा मजेदार बात बताएं, दुनिया में सबसे ज्यादा भूत प्रेत मानने वाले हिंदू लोग होते हैं। ये कहां से, ये भूत प्रेत कॉन्सेप्ट आया कहां? क्रिश्चियनिटी से आया, इस्लाम से आया, जुडाइज्म से आया। टॉपिक से हट रहा है पर काफी भूत शब्द है तो जानना जरूरी है। अब्राहमिक रिलीजन में ये यहां कोई ना क्रिटिसिज्म हो रहा है ना कोई तारीफ हो रही है, रियलिटी को फैक्ट चेक कर रहे हैं। अब्राहमिक रिलीजन में मतलब जिसमें जुदाइज्म है, इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है, उनमें साइक्लिक स्टेट को नहीं मानते कि पैदा हुआ मरा, मरा पैदा हुआ मरा पैदा हुआ का चक्र नहीं मानते। वो क्या मानते हैं, एक ही बार जन्म हुआ दैट कहें, मरना है और देर विल बी ए टाइम ऑफ जजमेंट। जब डे ऑफ जजमेंट आएगा तो उस दिन प्रभु पूछेगा किससे, अपने अपने प्रोफेट से। अब क्रिश्चियनिटी आप अगर जीसस को मानते हो तो वह अगर क्रिश्चियन हो तो आप जीसस से पूछेगा, अगर अगर आप इस्लाम वाले हो तो वो अपना कुरान के आयतों से पता लगाएगा। तो अलग अलग रिलीजन में उनकी पता करने की ठिकाना है कि कौन कौन इस रिलीजन को मानने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर आप अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं, चोरी करो, डाका डालो, बेईमानी करो, कुछ भी करो, सीधा स्वर्ग जाओगे। कब जाओगे? डे ऑफ जजमेंट के दिन। कैसे जाओगे? बॉडी के साथ जाओगे। अर्जी ये तो नहीं मानता, ये तो हेल को भेजो। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में तो गॉड पूछेगा, भाई तुम्हें जीसस को मानते हो जी नहीं मानता हो, गो टू हेल, सीधा जी नर्क भेजेगा, और कुछ नहीं। तुम पाप करते हो, पुण्य करते हो, हु केयर्स, गॉड ये सब काउंट नहीं करता। तुम जीसस को मानते हो, जी मानता हूं, जाओ इसको भेजो भाई। सीधा सा हिसाब किताब है, बहुत सिंपल है और बहुत अट्रैक्टिव है। कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है, खूब बेईमानी करो, वो करो, कोई नहीं, गॉड सिर्फ दो चीजें देखेगा। पर कैसे जाओगे? बॉडी के साथ जाओगे। तो बॉडी के कैसे जाऊं? मैं तो मर गया, मरना तो एक नेचुरल प्रोसेस है। रिलीजन तो मैन्युफैक्चर्ड है, थॉट तो मैन्युफैक्चर्ड है, पर मरना तो मैन्युफैक्चर्ड नहीं है ना, मरना तो पक्का। तो बॉडी तो छूटेगा, तो फिर वो क्या करते हैं, बॉडी को संभालते हैं। कैसे? इसके लिए उन्होंने क्या उपाय निकाले, जो ग्रेवयार्ड में जो दफनाना, जलाते क्यों नहीं है, क्योंकि जला देंगे बॉडी नष्ट हो जाएगा, तो जो स्वर्ग जा नहीं सकते ना, बॉडी के साथ जाना है। भगवान कहेगा तेरी बॉडी कहाँ है, पासपोर्ट नहीं है, जा। इसलिए बॉडी को सेव रखना पड़ता है। और आपको पता, इसीलिए 100 साल के बाद भी, 500 साल के बाद भी फैमिली मेंबर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं कि बॉडी ठीक हो। अरे वो आत्मा कहां जाए? डे ऑफ जजमेंट तो बहुत दिनों के बाद आएगा ना, बॉडी को तो दफना दिया, आत्मा भटकता रहे उसी के आसपास। डे ऑफ जजमेंट जब तना आता है, अगर इतना अच्छा आत्मा होगा तो जी अच्छा, गुड घोस्ट, गुड स्पिरिट हेल्प करेगा, है ना, प्योर सोल। अगर बुरा होगा तो परेशान करेगा फिर। इसीलिए भूत प्रेत कहां मिलते हैं पता है? ग्रेवयार्ड के आसपास, पुराने चर्चों के आसपास। कभी शमशान में भूत प्रेत का कहीं नहीं। कितने भी ये बॉलीवुड वाले तो सारे हॉलीवुड की नकल करते हैं, बॉम्बे वाले, कभी किसी हिंदी फिल्म में भी नहीं मिलेगा कोई हॉरर शो दिखाए भूत प्रेत का और उसमें कोई शमशान, शमशान समझते हैं ना, हिंदुओं का जो फ्यूनरल, नहीं दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ग्रेवयार्ड। ये भूत प्रेत उनके फिलोसफी में, उनके थ्योरी में ये कंसेप्ट फिट बैठता है। अब ये सही है गलत है वो अलग चीज है, हमारे यहां ऐसा नहीं है। मर गया, तुम्हें कर्मों के अनुसार जन्म मिल गया, इंसान बनेगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, जो बनना है बन गए। ये शरीर का क्या, यूजलेस है, जला देते हैं, दैट्स इट। भूत प्रेत क्लियर हुआ? तो परमात्मा उस भूत प्रेत जो मरने के बाद भटकते उनका राजा नहीं। तो भूत का मतलब क्या है संस्कृत में, हमारे शास्त्रों में? भूत मतलब जो कुछ चीजें बना हुआ है, एनीथिंग मेड क्रिएटेड, ऑल दीज आर भूत। तो मतलब मैं भी भूत हूं, आप भी भूत है, ये भी भूत है, ये माइक भी भूत है, ये फोन भी भूत है, ये सब भूत है, ठीक है ना, पंच महाभूत। तो परमात्मा ये समस्त भूतों का राजा बन जाता है। और आगे सदाधार प्रतिदिन उत इमाम द्याम, और वो परमात्मा जब सब कुछ बन गया, प्लैनेट्स भी बन गए, स्टार्स भी बन गए, परमात्मा ही उनको धारण करता है। धारण मतलब सस्टेन्स। अच्छा आपको पता है ना, मतलब कभी कभी हम भूल जाते हैं, धरती गोल है और हम सब धरती के ऊपर हैं और धरती घूम रही है, आप गिरते नहीं हो ना, कभी सोचा है? आप एक्चुअली महाकाश में लटके हुए हो, आप दूसरे ग्रह में चले जाओ अगर देखोगे तो आप सब लटके हुए हो एक्चुअली। ये धरती भी लट झूल रहा है, चांद भी झूल रहा है, सूरज भी झूल रहा है, सारे तारे नक्षत्र सब झूल रहे हैं, अब भी झूल रहे हो, पर कोई गिरता नहीं, कोई फटता नहीं। क्यों? ये जो कोऑर्डिनेशन है, हार्मोनी है ना, वो ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप यहां मानते हो, अलग अलग जगह अलग अलग है, ये सब लॉ जिसको हमारे वैदिक शास्त्र में कहते हैं कि ये सब रितम है, परमात्मा के द्वारा बनाया गया सिस्टम है इस यूनिवर्स, और यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं उनको धारण करने के लिए। तो परमात्मा इसी तरह संसार को धारण करता है और हम उस परमात्मा के लिए हवी से, हवी कहते हैं जो आप घी यज्ञ में जो भी आप चीजें आहुति के रूप में डालते हो उसको हवी कहते हैं। इस हवी के द्वारा हम अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। यहां एक शब्द आया कस्मै, इसी के साथ विराम करेंगे। वैसे तो संस्कृत में क का बहुत सारा अर्थ है, क का मतलब हु भी होता है, कौन है ना, किसके लिए। क का दूसरा अर्थ होता है कह सुखम आनंद। अरे स्वर्ग का दूसरा नाम क्या है, नाक, मतलब ये हिंदी में इसको नाक कहते हैं ना, नोज। संस्कृत में कोई नाक कहे तो ये नहीं, उसका अर्थ स्वर्ग। स्वर्ग हर शब्द के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं ना, तो एक शब्द है नाक। पता है क्यों नाक कहते हैं, क मतलब आनंद, न क अक, जैसे न ज्ञान अज्ञान, अक मतलब हुआ आनंद नहीं दुख, न अक दुख का अभाव, द स्टेट ऑफ अब्सेंस ऑफ सैडनेस पे। अब कहेंगे ये क्या, ये द्राविड प्राणायाम ना के दर से पकड़ो, बड़ा मैंने खोला है। सुख जो होता है, जहां जहां सुख मिलता है ना, वो टॉपिक चेंज है के बाद में करेंगे। सुख जो होता है वो दुख के साथ जुड़ा हुआ होता है। आपके लाइफ में कभी 100% सुख कभी नहीं मिलेगा, 100% दुख कभी नहीं मिलेगा, ऑलवेज इन्फ्यूज्ड विथ सुख एंड दुख। पर स्वर्ग क्या है, परमानंद, जहां किसी भी तरह का दुख का कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो चलिए मैं टॉपिक को ज्यादा ना करके, उसमें भी वो नाक में भी क है, क मतलब आनंद। यहां इसका अर्थ है उस आनंद स्वरूप परमात्मा को, वो आनंद स्वरूप जो सृष्टि के आरंभ में हिरण्यगर्भ था, जो सृष्टि से पहले परमात्मा के नाम से जाना जाता है, जो सृष्टि के बाद ईश्वर प्रभु के रूप में जाना जाता है, उस परमात्मा को जो आनंद स्वरूप है, हम हवि के द्वारा अपनी भक्ति अर्पित करते हैं, बार बार करते हैं। तो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् सदाधार प्रतिबिंब्या मुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेमा। मैं इसके लिए एक हिंदी की सुंदर कविता सुना के खत्म करूं। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जगत का स्वामी महान, जो है अस्तित्ववान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करे हम हवि देकर, जिसमें बल पर तेजो मय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित स्थिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगत देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसी देवता की उपासना करें हम हवि देकर।